नारायणं नमस्कृत्यं नरोच्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो यत्मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
हिंदी सब तो हिंदी है और क्या हिंदी आल्सो यस आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद की अध्याय 20। अध्याय का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। श्लोक क्रमांक 23। आपः पुरुषवीर्यः स्थ आपः पुरुषवीर्यः स्थ पुनन्ति भू भुवा श्वा पुनन्ति भू भुवा श्वा ता ना पुनति पुनीता अमिव ध्वनि ता न पुनीतामिव ध्वनि सुरुष्यताम् आत्मना भुवा इति सुरुष्यताम् आत्मना भुवा इति आपः पुरुषवीर्यस्थ पुनन्ति भूर्भुवस्व तान पुनित अमिवध्वनि सृष्यताम् आत्मना भूव इति आपः पुरुषवीर्यस्थ पुनन्ति भूर्भुवस्व ताना पुनिता अमिवध्वनि सृष्यतामात्मना भूव इति। कृपया पढ़िए पढ़िए।
आपः पुरुषविरजस्त ताना पुनितामिव ध्वनि सुरसताम आत्मना भव इति माताजी सब धन्यवाद। आपह हे जल पुरुष वीरज श्री भगवान की शक्ति से युक्त स्था आप है पुनंति पवित्र करने वाले भू भूलोक भुवा लिखा है भू भूलोक लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है भूव भूवालोक हाँ भूवालोक भूवालोक स्व स्वर्गलोक ता वह जल ना हम सबको पुनीत पवित्र करता है अमिव ध्वनि पापों का नाश करने वाला सुरुष्यताम स्पर्श करने वालों के आत्मना अपने स्वाभाविक पद के कारण भुवा देह इति इस प्रकार अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। क्रोंच द्वीप के निवासी इस मंत्र से उपासना करते हैं, हे नदियों के जल आपको श्री भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः आप भूलोक भुवलोक तथा स्वर्गलोक के पद को पवित्र करते हैं। अपने स्वाभाविक पद के कारण आप पापों को ग्रहण करते हैं, इसीलिए हम आपका स्पर्श करते हैं, आप हमें पवित्र करते रहें। कृपया मेरे बाद में दोहराएं। क्रोंच द्वीप के निवासी इस मंत्र से उपासना करते हैं, हे नदियों के जल आपको श्री भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः आप भूलोक भुवलोक तथा स्वर्गलोक को पवित्र करते हैं। अपने स्वाभाविक पद के कारण आप पापों को ग्रहण करते हैं, इसीलिए हम आपका स्पर्श करते हैं, आप हमें पवित्र करते रहें। तात्पर्य भगवद गीता में 7.4 श्री कृष्ण का कथन है, भूमिर आप अनला वायु खं मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्ठदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी भिन्ना अर्थात अपरा प्रकृति है। जिस प्रकार उष्मा तथा प्रकाश नामक सूर्य की शक्ति इस ब्रह्मांड में कार्यशील है, और प्रत्येक वस्तु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसी प्रकार परमेश्वर की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में कार्यशील है। शास्त्रों में वर्णित विशिष्ट नदियां भी श्री भगवान की शक्तियां हैं, और जो व्यक्ति इनमें स्नान करते हैं वे पवित्र होते रहते हैं। जय जय श्री राधारस बिहारी ललिता विशाखा देवी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री गौर निताय की जय। सचमुच अनेक लोग गंगा में स्नान करने से रोग मुक्त होते हैं। इसी प्रकार क्रौंच द्वीप के निवासी नदियों में स्नान करके पवित्र होते हैं। अमज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स पदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं विष्णुवांच श्रीरूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां स्वगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे। नमो मावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसेन। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले आप सभी उपस्थित वैष्णव और सब गुरु वर्ग से आशीर्वाद चाहता हूँ। कृपया भगवान को प्रार्थना कीजिए राधा रस बिहारी गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी को कि ये दुर्मुख से भी भगवान की बात भक्तों की बात यथार्थ रूप में बोल सकूं, जिसमें मेरा हृदय शुद्धिकरण हो और आप सबको आनंद मिले। हरे कृष्ण। इस श्लोक की पहले अनेक श्लोक है जिसका तात्पर्य नहीं है, इसी के कारण हम लोग 23 श्लोक पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले जो तात्पर्य नहीं है वो श्लोक सब पढ़ रहा हूं। 18 नंबर श्लोक से। घृत सागर से परे क्रौंच द्वीप नाम का अन्य द्वीप है, जिसका विस्तार घृत सागर से दोगुना अर्थात 16 लाख योजन है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत सागर से घिरा हुआ है, उसी प्रकार क्रौंच द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले दूध सागर यानी खीर सागर से घिरा हुआ है। क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक एक विशाल पर्वत है, जिसके कारण इस द्वीप का यह नाम पड़ा। तो ये ब्रह्मांड की रचना के बारे में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो इसमें तो अनेक चर्चा हो चुका है, तो यहीं पर बता रहे हैं अनेक दीपों में एक दीपो दूसरे सागर के द्वारा घिरा हुआ है, फिर नेक्स्ट दीप है उसके बाहर में फिर बड़ा सागर है। तो अभी घृत सागर के बाद जो दीप आता है वो है क्रौंच दीप। तो ये दीप का प्रस्थ बता रहे हैं, दीर्घता 16 लाख योजन है और वो घेरा हुआ है खीर सागर से। जैसे हम लोगों का एक्सपीरियंस तो है यहाँ पर नमक की सागर, लवण सागर, अगर दूध घी अगर बोलेंगे तो सपना की बात है और घी भी डालडा मिला हुआ घी है और दूध भी क्या क्या चीजों में बनाते हैं वो भी ठिकाना नहीं। लेकिन यह भगवान की सृष्टि देखिए, ये घी का सागर बनाने वाले हैं और दूध का सागर, और भी उसका परिमाण भी देखिए कितना बड़ा एरिया, 16 लाख से फिर दो गुना वो खीर सागर, और घृत सागर 18 लाख योजन। योजन मीन्स इंटू 8 माइल, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे गुणन करेंगे 8 में तो इतना माइल होगा। यद्यपि कार्तिकेय के शस्त्र प्रहार से क्रौंच पर्वत के डालों की वनस्पतियां विनष्ट हो गई थी, किंतु चारों ओर से खीर सागर द्वारा संचित होने एवं वरुण देव के द्वारा संरक्षित होने से वह पर्वत पुनः निर्भीक हो गया है। तो ये क्रौंच द्वीप का नामक हुआ है ये नाम से, क्योंकि ये पर्वत है जिस पर्वत का नाम क्रौंच पर्वत है, और पर्वत के ऊपर आक्रमण हुआ था कार्तिकेय द्वारा है। फिर भी पवित्र दूध, दूध तो सबसे पवित्र वस्तु है, तो इसके द्वारा वो घिरा हुआ है इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ा, भयभीत नहीं है, वो पर्वत भी पर्सनिफाइड है जो भयभीत नहीं हुआ, और वरुण देव के द्वारा सुरक्षित है ना? इस दीप के अधिपति महाराज प्रियव्रत के अन्य पुत्र थे जिसका नाम घृतपृष्ठ था और जो अत्यंत ज्ञानी थे। उन्होंने भी अपने देश का 7 भागों में विभाजित करके उनके नाम अपने 7 पुत्रों के अनुसार किया और स्वयं गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर परम कल्याणकारी समस्त आत्माओं के आत्मा श्री भगवान के पदारविंद में शरण ली। इस प्रकार वे सिद्धि को प्राप्त हुए। तो इनका राजा थे प्रियव्रत के पुत्र जिनका नाम है घृतपृष्ठ, और बड़े ज्ञानी थे, पीएचडी नॉलेज नहीं है, डिप्लोमा, ये आध्यात्मिक ज्ञानी की बात है। तो आध्यात्मिक ज्ञान होने का कारण वो अपना जीवन ये भौतिक उपभोग में नहीं गवाए, अपना 7 पुत्रों को विभाजन कर दिए क्रौंच द्वीप को, और बाद में और खुद संन्यास लेकर भगवान के भजन में लग गए। महाराज घृतपृष्ठ के पुत्रों के नाम आम, मधु, रुह, मेघपृष्ठ, सुधामा, ब्राजिष्ठ, लोही तारण तथा वनस्पति थे। उनके दीप में 7 पर्वत थे जो 7 देशों की सीमाओं को सूचित करने वाले थे, और 7 नदियां भी थे। पर्वत के नाम है शुक्ल, वर्धमान,
भोजन, अपवर्हण, नंद, नंदन तथा सर्वतोभद्र। नदियों के नाम अभया, अमृतोधा, आर्यका, तीर्थवती, रूपवती, पवित्रवती तथा शुक्ला है। घृतपृष्ठ महाराज जो सात पुत्रों को राज्य दिए थे तो वो भी सब सीमा है, जैसे अभी बाउंड्री कुछ बनाते हैं राज्य की, तो ऐसे यह बाउंड्री बनाने और वही दीप भी पर्वत के नाम से जाना जाता था, जिस जगह विभाजित एरिया, और पवित्र नदियां उसमें उनमें थे, उनका नाम तो पढ़े। क्रोंच द्वीप के निवासी चार वर्णों में विभाजित हैं, पुरुष, ऋषभ, द्रविण तथा देवक। वे जल के स्वामी वरुण के चरणारविंद पर इन पवित्र नदियों की जलांजलि अर्पित करके श्री भगवान की पूजा करते हैं। जैसे भगवान चार वर्ण किए हैं, चार वर्ण चार आश्रम, ये क्रोंच द्वीप में भी चार भाग में विभाजन किए हैं, तो इनका नाम कहते हैं उनकी गुण कर्म के हिसाब से। तो ये कहते हैं पुरुष, ऋषभ, द्राविड़ तथा देवक। तो ये सभी वरुण देव का उपासना करते हैं जो कि जलाधिपति है। तो अभी जो प्रार्थना हम पढ़े ये प्रेयर वो लोग करते हैं, ये सभी चार वर्ण क्रोंच द्वीपवासी। तो इसमें कहते हैं हे नदियों के जल, आपको श्री भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः आप भूलोक, भूवलोक तथा स्वर्ग लोक को पवित्र करते हैं। अपने स्वाभाविक पद के कारण आप पापों को ग्रहण करते हैं, इसीलिए हम आपको स्पर्श करते हैं, आप हमें पवित्र करते रहें। तो ये अध्याय में हम अगर देखें भगवान की शक्ति कितना पवित्र है, कितना आश्चर्यजनक है, तो वास्तविक हम लोग सोचते नहीं, इसीलिए अचिंत शक्ति को नहीं समझ पाते हैं और भगवान के प्रति सरेंडर भी नहीं होते हैं। तो ये सब सृष्टि ये नहीं कि ज्योग्राफी समझने के लिए, भूगोल समझने के लिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी नहीं बता रहे हैं, भगवान की अचिंत शक्ति का वर्णन कर रहे हैं जिसमें हमारा मन भगवान के चरणारविंद में केंद्रित होगा। अरे हमारा प्रभु इतना शक्तिशाली है, उनके पास सब कुछ उपस्थित है। तो प्रभुपाद इसकी परपट में तुरंत ही शुरू करते हैं भगवद गीता की 7 अध्याय के 4 नंबर श्लोक, जिसमें कहते हैं भूमिर आप अनल वायु खं मन बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्न प्रकृति रष्टधा। भगवान बोल रहे हैं मेरा और दूसरा प्रकृति है, अपरा है, ये अपरा प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति, ये 8 वस्तु है, 8 प्रकार की वस्तु है, जिसमें शुरू होता है भूमि, जल, वायु और अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो इसको छोड़ के और क्या बाकी है? अगर देखें कोई व्यक्ति अगर छोटा सा मुंबई में 4 एकड़ जमीन मिल गया तो वो सोच रहा है मैं ही मालिक हूं, लेकिन जिसके पास सारा ब्रह्मांड का भूमि है वो कितना बड़े आदमी है। और कोई भी नहीं कह सकता ये मेरा है, भगवान दिए हैं उनको, आज भी छीन सकते हैं उसको। मृत्यु सर्व हरश्च हम, मृत्यु के रूप में सब कुछ छीनने वाले हैं। एक्चुअली प्रोपाइटर है भगवान, हम लोग अकुपायर है, कुछ दिन के लिए अकुपाय किए, ये मेरा है। और जल की परिमाण
अभी म्युनिसिपैलिटी कितना कितना टैक्स लेता है देखिए, लेकिन जिस जल वृष्टि हो रहा है, जल की सभी प्रकार व्यवस्था करने वाले हैं भगवान। वृष्टि जल तो कोई दे ही नहीं सकता, अरे यज्ञ के माध्यम से यह वृष्टि जल हमको जो दे रहे हैं भगवान। अग्नि की व्यवस्था किए हैं, अग्नि नहीं होगा तो कुछ खाने के लिए ही मिलेगा नहीं, और खाने की बात तो छोड़िए, खा भी लिए तो पका भी नहीं पाएंगे। जो अंदर है वो शक्ति, एक्चुअली हम अगर देखें भगवान की बात, भगवत गीता में भी ये सब वर्णन है और आगे जाएंगे भागवतम आदि में तो डिटेल वर्णन करते हैं भगवान। कहते हैं अहम अश्या नरह भूत्ता प्राणिनाम देहम आश्रितम प्राण अपान समाजुक्ता पचामी अन्न चतुर्विधम। जो चार प्रकार के खाना खाते हो ना, चर्व्य चेष्य लोह पेय वैरायटी राजभोग जो कुछ भी बोलिए, स्वीट स्वीट समोसा आदि आदि इत्यादि, तो अगर खा लेंगे तो भगवान ही पचाते हैं और हमको ताकत मिलता है। अभी पचाने कैसे पचाता हूं भगवान कह रहे, अंदर की आग कोई गैस लगा करके नहीं जला सकता है, अब भगवान ही करते हैं। तो कैसे करते हैं कह रहे हैं, प्राण अपान समाजुक्त, जो प्राण वायु अपान वायु को इधर इधर करके मैं वो खाना को पचाता हूं उधर आग के रूप में रहकर। तो कभी कभी डाइजेशन नहीं होता है, अभी बारिश का समय होगा तो डाइजेशन नहीं होगा, मदाग्नि होता है, ये जठराग्नि मंद पड़ जाता है, इसके लिए इसको मदाग्नि कहते हैं। और वायु की व्यवस्था किए हैं, कितना ऑक्सीजन भगवान दिए हमको, कमी नहीं है। तो सभी वायु हर जगह सर्वत्र गवायु, सभी जगह जैसे भगवान ने इस वायु की व्यवस्था किए, कहीं पर भी हर कमरा बंद करके भी रहे उधर वायु आ रहा है हमको श्वास लेने के लिए। और गंदे गंदे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रस्तुत करने में भी भगवान इतना कृपालु है, उसको शुद्ध करके फिर ऑक्सीजन दे रहे हैं जो हमारे लिए चाहिए। और मन बुद्धि अहंकार, जिस मन बुद्धि को लेकर के हम सूक्ष्म शरीर, जो जिसमें हमारा सूक्ष्म शरीर में है मन बुद्धि और अहंकार, ये मन बुद्धि को लेकर हम भौतिक उपभोग करते हैं, इच्छा करते हैं, तो ये सभी भगवान का ही है। जिस भगवान ने इतना सुंदर सृष्टि कर रहे हैं, जैसे सृष्टि में अब हम देखे अभी का आलोच्य विषय में घृत की सागर है, दूध की सागर है, तो भगवान की शक्ति अचिंत्य है। अगर संक्षेप में बोलना है तो यही शब्द ही बोल सकते हैं। और जिसको यही विश्वास नहीं है वो तो भक्त बन नहीं सकता। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं चमार की, जो जूता सिलाई कर रहा था, और दूसरा एक ब्राह्मण की, ब्राह्मण है अपना जात के हिसाब से और ब्राह्मण का कार्य भी कर रहा है, रिचुअल कार्य, लेकिन भगवान की अचिंत शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है। नारद जी एक बार भगवान को दर्शन करने के लिए जा रहे थे भगवान नारायण को, तो रास्ते में पहले ब्राह्मण मिल गया, ब्राह्मण को जब मिले तो देखा तुरंत ही प्रणाम करके बोला, नारद जी कृपा करके आप भगवान विष्णु को पूछिए कि मेरा उद्धार कब है, जरूर पूछूंगा, और आप इधर से आएंगे ना, हाँ इधर से ही आऊंगा, तुमको बता दूंगा क्या बोलेंगे भगवान। तभी आगे जाते हैं तो एक चमार को देखते हैं, जिस चमार पेड़ के नीचे बैठ करके जूता सिलाई कर रहा है। तो जैसे ही देखा नारद जी को, दंडवत प्रणाम किया, नारद जी कहाँ जा रहे हैं, वैकुंठ हो जा रहा हूं भगवान को मिलने के लिए, तो कृपा करके एक प्रश्न पूछिए मेरे लिए कि मेरा उद्धार भगवान कब करेंगे। तो तभी नारद जी बोले हाँ ठीक है, तो मेरा आने तक इंतजार करो, मैं तुमको बता दूंगा। तो भगवान के पास जाकर जब नारद जी मिलते हैं तो अनेक बात होता है, भगवान स्वीकार उनको अतिथि से सत्कार करते हैं, अपना प्रिय भक्त है नारद जी। बाद में नारद जी को याद आता है ये दोनों की बात, और पूछते हैं ब्राह्मण की बात। ब्राह्मण जी, ब्राह्मण जी का उद्धार कब होगा प्रभु, वो पूछे थे, उसका उद्धार नहीं है, अनेक जन्मों के बाद भी। तो ब्राह्मण का उद्धार नहीं, तो मैं उसको क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं? ये जवाब देने से तो उसको हार्ट फेल हो जाएगा तो क्या जवाब दूं उसको? बोलने के आपको बोलना है कि भगवान क्या कर रहे थे, तो वो पूछेगा, तो आप बोलना भगवान एक सुई के नोक में एक हाथी को इधर डाल रहे थे और इधर खींच रहे थे, फिर इधर से खींच करके इधर ला रहे थे, सिर्फ इतना बोलना था, ठीक है। अरे चमार भी एक पूछा, तो चमार का उद्धार कब होगा? चमार का उद्धार यही जीवन में ही होगा। अरे ब्राह्मण का उद्धार अनेक जीवन के बाद भी नहीं हो रहा, ये चमार का उद्धार हो जाएगा अभी? तो कैसे ये पता करूं मैं? तुमको भी वही पूछेगा वही सवाल, तुमको वही उत्तर देना है। नारद जी निकल गए, पहले ब्राह्मण को मिले, ब्राह्मण को, ब्राह्मण जब पूछा, नारद जी को देखा तो बहुत खुश हो गया, दंडवत प्रणाम किया, और ब्राह्मण पूछा मेरा प्रभु जी क्या कर रहे थे, भगवान क्या कर रहे थे वैकुंठ में? जवाब, भगवान एक सुई के नोक में हाथी को इधर डाल रहे थे, उधर खींच रहे थे, और इधर डाल करके इधर खींच रहे थे। तो वो सोचने लगा, आप क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे पास, सही बात बोलिए ना क्या? और बाद में अरे भगवान यही कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं ना, तो उसको बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता और गुस्सा हो जाता है। आपको मजाक करने के लिए कोई आदमी नहीं मिला, और नाराज होकर के चला जाता है। तब समझ जाते हैं नारद जी ब्राह्मण का, ब्राह्मण कितना पानी में है। तो तभी आगे जाते हैं, तो ये चमार को मिलते हैं, जिस चमार की बट वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठा है। जैसे ही नारद जी को देखा, अभी दंडवत प्रणाम किया, प्रेम में गदगद हो गया और पूछने लगा, प्रभु मेरा भगवान क्या कर रहे थे जब आप दर्शन किए? तो एक सुई के नोक में हाथी को इधर डालकर उधर खींच रहे थे और उधर से इधर खींच रहे थे। ओ मेरा प्रभु ऐसे कर रहे थे? और प्रेम में गदगद हो जाता है और आंख से आंसू निकलता है, रोम खड़े खड़े हो जाता है और डांस करने लगता है। तो नाराज जी आश्चर्य होकर पूछते हैं, तुमको, तुम ये बात को सच मान रहे हो? हाँ, सच कैसे नहीं मानो, कैसे सच मान रहे हो? तो मेरा प्रभु क्या नहीं कर सकते? तो क्या देख रहे हो तुम? क्या मैं तो देख रहा हूं भगवान कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हो? अरे देख रहा हूं यही सामने जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं, ये कितना बड़ा पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ मेरा प्रभु एक फल जो कि बट वृक्ष का फल होता है, छोटा फल, आप सब देखे होंगे भारतीय लोग, जिस फल में एक एक छोटा छोटा फल में अनेक हजारों छोटे छोटे सरसों के दाने से भी छोटे छोटे बीज रहता है। तो हर एक बीज के अंदर भगवान इतना बड़ा बड़ा पेड़ पैदा कर सकते हैं। तो इतना बड़ा सा पेड़ भगवान कहां रखे हैं? इतना सरसों से भी छोटा सा सीड में, बीज में। तो जिस भगवान इतना छोटा सा बीज से इतना बड़ा पेड़ निकाल सकते हैं, तो सुई के नोक से एक छाती, एक हाथी को निकाल करके फिर डालना क्या बड़ा बात है? नारद जी कन्विंस हो गए, अरे इसका उद्धार तो अभी ही है, ऐसे व्यक्ति को। तो वास्तविक भगवान की अचिंत्य शक्ति को विश्वास करना है हमको, और ये विश्वास तभी होता है, ऐसा एक्सपीरियंस डिवोटी से हम अगर सुनते हैं हरि कथा। और ये भगवान की शक्ति को खुद भगवान भी आश्चर्य हो जाते हैं। जब गीता महात्म्य में हम देखते हैं, जब भगवान एक बार आश्चर्य से, भगवान नारायण आश्चर्य में थे, तो
लक्ष्मी देवी पूछने लगे, प्रभु आपका क्या बात है आश्चर्य, दुनिया देखकर आपको आश्चर्य होता है लेकिन आप आश्चर्य होने की क्या बात है। पिता भी कहते हैं मेरा शक्ति को देखकर मैं ही आश्चर्य हो रहा हूं। परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविक ज्ञान वलक्रिया। भगवान का इच्छा से ही ऑटोमेटिक कार्य हो रहा है। भगवान अगर कंपेयर भी करें मेरा शक्ति कितना है वो भी माप में पाएंगे। इसीलिए एक ही शब्द है जो अचिंत्य है, इनकंसीवेबल, जो सोचते हैं हो जाता है। और ज्ञान बल क्रिया में संबित संधि निहलादिन, ये शक्ति के द्वारा सारा जगत भरा पड़ा है, ये मेटेरियल स्पिरिचुअल हर जगह। लेकिन वही आदमी को अगर हम हमारा जैसा सोचेंगे तो ये बुड़बक का ही काम है। तो ये भगवान नारायण तब ये बात कहते हैं तो लक्ष्मी देवी तुरंत प्रश्न करते हैं, तो प्रभु मैं आपका शक्ति को समझना चाहता हूं। जो जो कठिनाई बात है कोई कहता है तो लोग चाहते हैं हाँ मुझे वो करना है, तो मेरा शक्ति को तो कोई पूर्ण रूप में समझ नहीं सकता है, माप नहीं सकता है, लेकिन तुम समझना चाहते हो, अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो तो गीता सुनो। तो गीता में मैं मेरा शक्ति के बारे में बताया हूं, और तो तभी गीता महात्म्य मुझे सुनाइए। तभी भगवान एक एक अध्याय की महात्म्य सुनाते हैं और वही बात को शंकर जी पार्वती देवी को सुनाते हैं। तो अगर गीता में देखें तो गीता की जो चतुर्श्लोक की गीता है सार वस्तु, तो भगवान यही कंक्लूजन दे रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुद्ध भाव समन्विता। दशम अध्याय जो विभूति योग है, आठ नंबर अध्याय से, ये आठ नंबर श्लोक से बारह नंबर श्लोक तक, ये चार श्लोक में सबसे गहरा ज्ञान भगवान दिए हैं। जो भगवान कह रहे हैं मैं सभी का सोर्स हूं, सभी का उद्गम स्थल हूं, ये सब बता दिए। जैसे अर्जुन पूछे आप कैसे कैसे हर जगह प्रभु व्याप्त है, तो भगवान बताने लगे एक एक करके, रस हम अपशु कुंतिया क्या क्या सब एक एक करके सभी बताने लगे। और बाद में बोलते हैं न अंत अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप, अरे मेरा शक्ति का अंत कहां है, तुमको समझने के लिए थोड़ा मैं बता दिया है। अरे जो कुछ भी देख रहे हो अच्छा सौंदर्य मन व्यक्ति सौंदर्य वस्तु और आश्चर्यजनक शक्ति, ये सब मेरे ही तेज से बना हुआ है, तेज से सृष्टि हुआ है। और लास्ट में तो कहते हैं अथवा बहुना एतेन किं ज्ञातेन तवच अर्जुन विष्टव्य अहम इदम कृष्ण एक अंशेन स्थितो जगत। अरे अर्जुन तुमको ये सब इतना सुनने का क्या जरूरी है, बोला अरे मेरा एक अंश से ही ये सारा दुनिया सृष्टि होता है, भगवान की अंश। ऐसे तो अनेक विस्तार है चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, लेकिन अंश अगर बोलेंगे तो भगवान नारायण जिसको देख रहे हैं इधर, तो गर्भोदक साई विष्णु उनका भी सोर्स जो है कारणोदक साई विष्णु महाविष्णु, उनसे सारा भौतिक ब्रह्मांड सृष्टि होता है। जो कि सांस छोड़ते हैं तो हर एक एक रोम कूप में एक एक ब्रह्मांड निकलता है, इनगिनत ब्रह्मांड। और एक एक ब्रह्मांड में फिर अपना शक्ति से वो घुसते हैं गर्भोदक साई विष्णु के रूप में, और नाभि कमल से ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हैं, और नाभि जो नाड़ है कमलनाड़ वही 14 ब्रह्मांड है। और वही 14 ब्रह्मांड की जो भूलोक भूवालोक स्वालोक का हम अभी पाठ कर रहे हैं उसमें ये इतना इतना जोजन सब दीप पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कहां पर हैं। वही भगवान सभी एक जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, और ये दुनिया को मेंटेन करने के लिए एक ब्रह्मांड में
क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में विराजमान है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव, जितना भी सृष्टि का उद्गम हूं मैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ सृष्टि होता है। अरे अभी ये श्लोक में तो बोले ही ये जल भूमि अग्नि वायु आकाश ये सब मेरा ही है। और प्रभुपाद उधर एक्सप्लेन करते हैं जैसा सूरज की रोशनी और आग और उत्ताप, आलोक और उत्ताप, तो ये लाइट एंड हीट, ये कभी अलग नहीं हो सकता है अग्नि से। तो इसे भगवान की शक्ति भगवान से अलग नहीं हो सकता है। कोई पहलवान अभी कितना शक्ति एक्सरसाइज करके प्राप्त किया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अलग हो जाएगा, एक कप टी उठाने के लिए भी ताकत नहीं रहेगा, लेकिन भगवान की शक्ति कभी उनसे अलग नहीं होता है। इसलिए भगवान का नाम है अच्युत, जो अपना पोजीशन से कभी हटने वाले नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ सृष्टि मुझसे सृष्ट होता है। इति मत्वा भजते माम बुद्ध भाव समन्वित, जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये जान लेता है इसी के कारण मेरा भजन करता है। कैसे भजन करता है? भाव से। तो ये बात भगवान जिसके ऊपर एक वास्तविक स्नेह में अभिभूत हो जाते हैं उसको ये बात बताए हैं। भागवतम में भी देखिए, चैतन्य चरितामृत में भी देखिए और गीता में भी देखिए। तो मेरा भजन करो भाव से। बल प्रहलाद महाराज को भी भगवान नरसिंह देव लास्ट में अंतर्ध्यान होने के समय यही बात ही बताए थे, जान लो मैं सभी का उद्गम सोर्स हूं और बुद्धिमान व्यक्ति मेरा भजन भाव से करता है। अगर जिसको जानकारी हो गया, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जो सबसे धनवान व्यक्ति है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे सुंदर व्यक्ति है, जसवान व्यक्ति है, त्यागवान व्यक्ति है, अगर इतना सड़गुण संपन्न व्यक्ति अगर है, अगर वो भी स्नेह करते हैं तो क्यों उसके पास नहीं जाएगा? कोई व्यक्ति जैसे देखते हैं जामाता ढूंढते हैं, जिसका बेटी होता है तो उनको ढूंढते हैं, अच्छा व्यक्ति होगा तो उनको से संबंध करके मेरा बेटी दूंगा, या बेटी भी चाहती है कि मुझे अच्छा पति मिले। कोई व्यक्ति चाहता है मुझे अच्छा दोस्त मिले जो उनके मुझे हर हाल में काम में आएगा, लेकिन ऐसे दोस्त बना रहे हैं, ऐसे पिता बना रहे हैं, ऐसे स्वामी बना रहे हैं जो कि आपसे गुजरने वाला है, मरने वाला है, और अगर नहीं मरा तो आपको अभी मदद भी कर रहा है, धोखा नहीं दिया, तो कुछ दिनों के बाद वो मरना ही है। अगर माया के प्रभाव कलियुग का प्रभाव हुआ तो अभी आपको धोखा दे सकता है, लेकिन यही सम्मान और उनकी सेवा करके हम लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी होना है तो भगवान की भजन करना है। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति मेरा भजन करता है भाव से। और क्या करता है? कह रहे मन मना मच्चिता मदगता प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य स्तुष्यन्ति रमन्ति च। तो उसका काम क्या है? ऑफिस में जाना नहीं, सिंपली एक क्यूआर को, जैसा राजा की बेटा, राजा की बेटी या राजा की पत्नी, उन लोगों का कुछ काम नहीं है, मस्ती में रहना, सिर्फ राजा को प्रेम करना है, राजा के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ टेंशन नहीं रहता है उसका। जिस व्यक्ति छोटे से बच्चा से हमको ये ज्ञान प्राप्त करना है, बच्चा अगर पिता माता की आश्रय लिया है, छोटा सा बच्चा पिताजी का हाथ पकड़ा रहता है तो वो सोचता है दुनिया की कोई व्यक्ति मेरा बुरा नहीं कर सकता। अगर सर्वशक्तिमान भगवान का जो शरण लिया है उसका कोई बाल बांका कर सकता है? और पूर्ण अभय स्थिति है। देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रहलाद महाराज कन्विंस है मेरा प्रभु मुझे सुरक्षा देने वाले हैं, तो कोई भी हाल में विचलित तो नहीं रहते थे, कंप्लीट सरेंडर। तो कह रहे हैं मच्चिता मदगता प्राणा बधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो मेरा बारे में ही चर्चा करते हैं, मदगता प्राण, उनका प्राण मुझे उछावर किए रहते हैं और आपस में मिलते हैं तो यही बात करते रहते, भगवान की गुणगान, नाम संकीर्तन, लीला चरित्र आदि। और वो लोग ऐसे युक्त होते हैं 24 आवर, और ऐसे युक्त होने के कारण मैं उनको बुद्धि जोग देता हूं। तेसाम सतत युक्तानम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददाम अहम बुद्धि जोगम ताम जेन माम उपजानती थे। यही मेटेरियल इंटेलिजेंस को भी भगवान को नहीं समझ सकता है कोई, जितना भी तीव्र बुद्धिमान को, सबसे तीव्र बुद्धिमान व्यक्ति तो ब्रह्मा जी है, इतना सुंदर सृष्टि कर रहे हैं, सेकेंडरी क्रिएटर, लेकिन उनका चार चार मथा भी चकरा जाता है भगवान की शक्ति को देख करके। ब्रह्म व्यूहान लीला देखिए, एक मथा वाले का तो हाल क्या हो सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं इंजीनियरिंग डिग्री किया हूं और PhD किया हूं, अरे ये तो अज्ञान है, फिर भुलाने वाला है भगवान को। तो भगवान को समझने के लिए भगवान बुद्धि जोग देते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। तो कैसे बुद्धि प्राप्त होगा? 24 आवर युक्त होना है। सुबह से उठकर मंगल आरती, गुरु पूजा, जप करते हुए भागवतम क्लास, फिर महाप्रसाद, फिर सेवा, और फिर शाम पे फिर आरती, कंटिन्यूली 24 आवर ऐसे अनगैज रहता है कि उसके लिए फुर्सत ही नहीं। तो ऐसे युक्त होने के कारण उसको बुद्धि देते हैं, बुद्धि योग देते हैं, जिसके माध्यम से भगवान को समझ सकता है। और वही व्यक्ति को भगवान बोलते हैं मैं कृपा करके उद्धार कर लेता हूं ये दुखमय जगत के। तेसाम अहम समर्थता मृत्यु संग मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मई आवेशित चेतसाम। तो वही व्यक्ति को मैं कृपा करके ये भवसागर से उद्धार कर लेता हूं और फिर दोबारा ये भौतिक जगत में जन्म नहीं देता। तो यही भगवान के भजन करने के लिए वास्तविक हम सब आए हैं और यही प्रयास है, लेकिन इतना तो कन्विंस नहीं है जैसे प्रहलाद महाराज जैसा। तो ये स्थिति हमारा प्राप्त करने के लिए कलियुग का युग धर्म श्रद्धा के साथ पालन करना है, वो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन के अलावा ना कुछ अध्ययन, ना तपस्या, ना कोई दूसरा प्रकार की हमारा भक्ति का विकार जो है, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कलियुग का प्रभाव बहुत ही अत्यंत प्रबल है। तो इसके लिए एक ही उपाय है, इसीलिए कहते हैं हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव ही केवलम। तीन तीन बार मना किए, फिर एव ही, एव और ही मिलकर 5 बार हो गया, मना करना नहीं हो, उपाय नहीं, उपाय नहीं, उपाय नहीं, एक हरि का नाम कलो। ये कलियुग में नास्तैव गतिरन्यथा, और दूसरा गति नहीं, दूसरा गति नहीं, दूसरा गति नहीं। तो वास्तविक हमको यही स्थिति प्राप्त करना है, भगवान को समझ करके यही जीवन में भगवत धाम जाना है। तो हमको नाम ही का शरण, भगवान की नाम पे ही शरणागत होना है। बड़े बड़े तपस्वी देखे हैं, अनेक सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाले व्यक्ति, उनका तो पतन हो रहा है। तो हम लोग किस खेत के मूली हैं? और गीता में बार बार भगवान बोलते हैं जततो ही अपिकुंत पुरुषस्य विपश्यते, ऐसे अनेक श्लोक में कहते हैं पतन हो जाता है। हम अगर जैसे हरिदास ठाकुर शरणागत लिए भगवान की नाम पे, ऐसे अगर शरणागत होकर के भक्ति योग अभ्यास करते हैं तो दिने दिन भक्ति वृद्धि होगा और भगवान की भक्ति योग में पूर्ण रूप में तल्लीन होकर भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे और अचिरात हमारा जीवन अंतिम जीवन होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। समय हो गया है, तो एक एक ही प्रश्न लेते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
आपने जो आज भगवान की अचिंत्य शक्तियों के बारे में बताया ना, अचिंत्य शक्ति,
हाँ,
तो चतुर्श्लोक की भागवत के बारे में बोला आपने,
हाँ,
तो हमारी इस्कॉन भी चतुर्श्लोक की है, ए बी सी डी, एसोसिएशन बुक रीडिंग चैंटिंग एंड डाइंग, मतलब चतुर्श्लोक की हमारी इस्कॉन भी चतुर्श्लोक की है, जो ब्रह्मा जी से आई हुई है उसी श्लोक के हम अनुसरण कर रहे हैं, और चार ही चीज छोड़नी है, चार ही चीज अपनानी है, इलीगल रिलेशन, चोरी, शराबी, शराब, मांसाहार, इस प्रकार का हमको छोड़ना, चार ही चीज छोड़नी है और चार ही चीज पैदा करनी है, चतुर्श्लोक की भागवत का विस्तार है।
धन्यवाद। तो वास्तविक आपका बात तो सही लग रहा है, लेकिन हम लोगों का कार्य नया प्रोडक्शन नहीं करना है, कुछ आचार्य लोगों की बात यथार्थ रूप में रिपीट करना, जिसमें कभी भूल भटका नहीं रहता। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
किसका प्रश्न है तो पर्सनल कर लीजिए, अनेक भक्तों हैं, अभी छुट्टी दे देते। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।